नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सरकार ने डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम के अंतर्गत दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार ने डेंगू और मलेरिया के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है, क्योंकि मई से ही इस बात का अंदाजा था कि बारिश के मौसम के कारण बीमारियां फैल सकती हैं। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि राजधानी के सभी अस्पतालों में ऐसे मामलों के लिए बेड का इंतजाम भी किया गया है।
हमारे हर हॉस्पिटल में उसके लिए बेड की व्यवस्था, साथ में आईसीयू में वेंटिलेटर की भी अलग से इमरजेंसी हो रही है, और अभी तक से पेशेंट आए लेकिन वो ठीक होकर अपने घर गए, और हम डॉक्टर विद मेडिसिन सब कुछ हर हॉस्पिटल में प्रिपरेशन है और कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई अभी तक से, एक अच्छी अवश्य है।
दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी विदेशी नागरिक 15 दिन की तय समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके हुए थे। पुलिस ने विदेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, 7 डबल एंट्री वीजा और 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री सिरसा ने कहा कि बजट होने के बावजूद पिछले 3 सालों में पूंजीगत व्यय में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कई योजनाएं लाई लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया गया।
इम्पोर्टेंट बात एक जो और सामने आई कि बहुत सारे हेड को तब्दील इधर उधर किया गया जिनकी जरूरत नहीं थी, और कई जगह तो पैसा और भी मांगा गया और मांगने के बाद पता चला कि वो भी सरेंडर कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी उस पर चर्चा होगी और आपके सामने वो भी लेके आए।
दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने 2020 दंगों की साजिश को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि हिंसा को श्री ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। श्री सूद ने कहा कि पिछली सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन का बार बार बचाव किया और उसे राजनीतिक संरक्षण देने का भी प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधायकों के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर तिरंगे के तले दिल्ली और देश की सेवा करने के संकल्प को दोहराने का मौका देता है।
तिरंगा यात्रा 2014 से ही प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद, देश की सेवा में आने के बाद से ही तिरंगा यात्रा का पूरे दिल्ली भर में और देश भर में आह्वान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का ये मौका तिरंगे की छाव में दिल्ली और देश के लिए सेवा के संकल्प को पुनः लेने का अवसर होता है।
राजधानी के अक्षरधाम मंदिर में आज आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिसर में 4 नए टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया। सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और देश की राजधानी होने के साथ साथ इसका ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज इन सभी पहलुओं को देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के प्रभावी उपयोग से अब सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सुगम और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सरकारी खरीद प्रक्रिया पहले छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए कठिन और अधिक समय लेने वाली थी। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सरकारी खरीद में जेम के बढ़ते उपयोग और सेवाओं की खरीद में लगातार बढ़ रही भागीदारी को देखते हुए दिल्ली को सस्टेन्ड सर्विस प्रोक्योरमेंट एडॉप्शन श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जेम के माध्यम से सेवाओं की खरीद में बढ़ती हिस्सेदारी और जेम के फायदों को पहचानते हुए दिल्ली के सरकारी खरीदारों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जेम के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लगभग 600 करोड़ रुपए के 156% अधिक है। वहीं इसको बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 65 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 3600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रोजगार, नवाचार और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर एमएसएमई को अवसर, हर उद्यमी को पारदर्शी बाजार और हर छोटे कारोबारी को आगे बढ़ने का मजबूत प्लेटफॉर्म मिल सके। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 8 सितंबर कर दी है। एक रिपोर्ट।
अभी तक के 49 कार्यक्रमों के अलावा CDOE ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 11 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य अपने शैक्षणिक दायरों को बढ़ाना और सीखने वालों को आवश्यक शैक्षणिक भाषा और व्यवहारिक कौशल का अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 22 अगस्त के बजाय 19 सितंबर को होगी। दोनों कार्यक्रम के लिए परीक्षा केंद्र JMI कैंपस के अंदर ही होगा और इसकी जानकारी एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने जरूरी और कौशल आधारित कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक अवसरों को मजबूत करने और विश्वविद्यालय की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग को फिक्की पब्लिकान 2026 पब्लिशिंग अवार्ड में प्रतिष्ठित बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के लिए प्रदान किया गया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कल अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कई विधेयक जहां पारित किए गए, वहीं शून्यकाल में कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए। शून्यकाल के दौरान मोतीनगर विधानसभा के सुदर्शन पार्क में भूमिगत जलाशय बनाने का मुद्दा क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना ने उठाया। भाजपा विधायक श्याम शर्मा ने एक बार फिर गायों मवेशियों के सड़कों पर खुलेआम छोड़े जाने का मामला रखा। वहीं भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने जीटीबी अस्पताल में अनुबंधित कर्मियों को निकाले जाने का मामला सदन में रखा। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में प्रस्ताव रखा कि दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए सदन में हंगामा किया। नारेबाजी के बीच सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने पर फिर नारेबाजी चलती रही और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सदन में रखे गए दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने सदन में फिर हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार, जुबैर अहमद सहित लगभग सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली शयन कक्ष और भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 को भी पारित किया गया। विधानसभा में आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इसके साथ ही श्री सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक 2026 सदन पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत नेशनल बिल्डिंग कोड शब्द की जगह केवल बिल्डिंग बाइलाज रखा जाए, जिससे आने वाले समय में अग्नि सुरक्षा संबंधित नियम सुव्यवस्थित हों। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 7 अगस्त को सदन पटल पर रखी गई दिल्ली सरकार से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के ऊपर प्रस्तुत कागजातों पर चर्चा की गई। साथ ही 10 अगस्त को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऊपर भी चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस आम आदमी पार्टी ने 34 योजनाओं में 2961 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीओजी रिपोर्ट संख्या 1 में मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सीएजी की टिप्पणियां, लेखा परीक्षा निष्कर्ष और निष्कर्षात्मक टिप्पणियां शामिल हैं। इसके बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सरकार ने डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के अंतर्गत दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। We'll be right back.